कैसा रहा कल का प्रभु मिलन? अच्छा रहा, हुआ या ऐसे ही हुआ? कल की मुरली की मुख्य बातें बोलो। एक तो निवारण स्वरूप, निवारण से क्या जोड़ा बाबा ने, निर्वाण में भेजना है तुम्हें सबको। निवारण स्वरूप बनो तो सबको निर्वाण में भेज सकेंगे। गहरी बातें हैं कल की मुरली, बहुत गहरी। और बोलो, बेहद की वैराग्य वृत्ति, उसमें भी जोड़ो कुछ, क्या क्या हो वैराग के साथ। उमंग उत्साह बहुत हो और खुशी बहुत हो, तीसरा भी एक जोड़ लें, स्नेह भी बहुत हो। चलो इन पर विस्तार करेंगे। तीसरी मुख्य बात, कारण नहीं। पुरुषार्थ में कारण देंगे, जैसे आज माताओं ने दे दिया, ठंडी है, उधर ही सुन लेंगे क्लास तो स्पीकर पे सुन लेंगे, ये कारण हो गया ना। कारण नहीं। और बोलो भाई, अनुभव भी मूर्त बन, सबको अनुभव कराओ। वैसे भी भाषण करने वाले तो अपने यहाँ बहुत हैं, बाहर भी हैं, लेकिन अनुभव कराना। क्यों अनुभवी? वो भूलेगा ही नहीं, वो फिर आएगा, चला भी गया फिर आएगा। जैसे बाबा के बच्चे ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद आते हैं, कहीं कुछ मिलता ही नहीं, कि यही अच्छा है, आ जाते हैं ना, यहाँ से अच्छा कहीं नहीं, इसलिए यही ठीक है। और बोलो माताएं, और पॉइंट्स भी हैं। देह अभिमान की बहुत बड़ी बात है, उसकी भी एक सुंदर बात। ठहरो, देह अभिमान की सुंदर बात, उसके साथ एक सुंदर बात सुनाओ जो बहुत सुंदर है। जैसे देह अभिमान नेचुरल नेचर बन गया है, सोचना थोड़ा पड़ता है मैं देह हूँ, नेचुरल, ऐसे ही देह अभिमानी को भी नेचुरल नेचर बनाओ, संस्कार बना दो उसको, नेचर हो जाए वो हमारी। जैसे किसी की ज्यादा बोलने की नेचर है, उसको लाख लोग समझाएं, वो भी कोशिश करे लेकिन वो ज्यादा ही बोलेगा, नेचर होती है ना। और बोलो और पॉइंट्स, मुक्ति दाता, पुकार सुनो, पुकार हो रहे, अब तो बहुत हो गई, जबकि ये मुरली है तब तो थोड़ी कम थी, अब तो पुकार बढ़ती जा रही है। एक चीज और बढ़ रहा है संसार में, मैं माताओं को विशेष कहूंगा, वो मातृ शक्ति में बढ़ रहा है डर, भय, और वो है सेल्फ क्रिएटेड भय, स्वयं निर्माण कर लिया जाता है भय। मैं एक उदाहरण बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल किसी का, और उससे आप समझना कि हमें ऐसे संकल्प क्रिएट नहीं करने हैं जो जीवन को ही खराब कर दे। एक तो छोटा मोटा भय होता है, दूसरा होता है जीवन को ही खराब कर दे। और बताओ पॉइंट्स कल के। हाँ, देह अभिमान से पुराने संस्कार, देह अभिमान पुराना संस्कार है, वैसे भी 5000 साल का ही समझो देह में ही रहे हैं, तो वो कारण है सभी समस्याओं का, सभी विकारों का, पाप कर्मों का। तब तो हम लोगों ने क्लास में जब ये मुरली चली थी, देह अभिमान के प्रैक्टिकल स्वरूप क्या क्या होते हैं उसकी लिस्ट बनवाई थी। क्रोधाना भी देवान है, मैं पनाना भी देवान है, मेरे बच्चे कहना भी देवान है, मेरी जिम्मेदारी, फीलिंग, मोह, सारे जितनी बुराइयां हैं, देवान उनकी जड़ है, बीज है। एक और सुंदर बात थी, पहली पहली जो आज भी थी, डबल मालिक, इसको गहराई से रियलाइज करना है। ये केवल केवल एक सेकंड के अनुभव की बात है, जिसको लग गई उसको अनेक प्राप्तियां सहज हो गई। हम भगवान के बच्चे हैं। उदाहरण ले लें, राजा को बच्चा पैदा होता है, अब वो थोड़ा ही बड़ा होता है, क्या उसको बताना पड़ेगा ये राज तुम्हारा है? कैसे नेचुरल होगा, अधिकार की फीलिंग, हम इस राज के मालिक हैं। महसूस करें आप सभी, आपके घर में बहुत धन संपदा है, आपको बच्चे हैं, उन्हें सोचना पड़ता है क्या कि ये सब हमारा है? बोलो माताएं, उनका ही है। हाँ, विदेशों में बात अलग है आजकल, वहां कार भी मम की अलग तो डैड की अलग, अकाउंट भी दोनों के अलग, घर भी है, नाम से हैं। वो यूज ही ये शब्द करते हैं, मम्स कार, मेरी कार है ये नहीं। और भारत में एक कार हो, अगर 10 लोग भी हैं घर में, सब कहेंगे हमारी है। ये भारत की सूक्ष्म परंपरा, श्रेष्ठ भारतीय कल्चर, जहां परिवार जुड़े हुए हैं, अपनापन है। हम भगवान के बालक तो क्या हो गए? मालिक। बालक बनते ही मालिक, इसमें देर लग रही है। जो कुछ उसका वो सब, इसमें देर लग रही है। अब इस देर को खत्म करेंगे सभी, चिंतन में लाएं इसके, सोचने और कहने की बात ही नहीं, जो कुछ उसका वो। अब बोलो क्या क्या? मान लो वो शांति का सागर है, अब वो शांति उसके काम की तो नहीं है, सागर है पर उसके काम की तो नहीं है। जैसे वो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान तो उसका भी है और हमारा भी हो गया, उसकी संपूर्ण शांति हमारी, स्वीकार कर लें। वो सुखों का सागर है, उसके संपूर्ण सुख हमारे, वो सुखों का दाता है, तो सबसे पहले सुख किसे देगा? अपनों को देगा ना, वो सभी उसके अपने हैं, लेकिन हम खास हैं या नहीं खास? वो सर्वशक्तिवान है, शक्तियां किसकी? बोलो, मांगने की तो जरूरत ही नहीं। बाबा की बहुत पहले की मुरली, बहुत दिन के बाद मुझे भी याद आया, बच्चे कहते हैं बाबा ये शक्ति दो, कोई कहते सहन शक्ति दो, कोई कहेंगे समस्याएं बहुत है इन्हें सामना करने की शक्ति दो। बाबा ने उत्तर दिया, दो नहीं दे दी है। बाबा को ये नहीं कहो दो, दे दी है। सारी शक्तियां हमारे पास हैं, हमने उनको लॉकर में बंद करके बैंक में छोड़ दिया है, चाबी भी खो दी, ये हुई गड़बड़। वो सब हमारा ही माल है, सारे खजाने, और भी बहुत खजाने, उन खजानों का हमें अनुभव होना चाहिए, तब लगेगा आज की मुरली के आधार पे भी मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, सौभाग्यशाली नहीं, 100,000,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, उसके आगे बहुत कुछ होता है, पदम तो बहुत बड़ी संख्या है मैथमेटिक्स में। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, उसकी निशानियां तो आज बता दी, सब अपने को चेक कर लेंगे, ये करेंगे तो सौभाग्यशाली, ये करेंगे हजार, ये करेंगे लाख, ये करेंगे करोड़, बहुत क्लियर था ना आज। तो सर्व खजाने हमारे हैं, वो हमारे पास हैं वो हमारे पास। क्या खुशी हमारे पास नहीं है? भगवान जिनको पढ़ाता हो, जिनका श्रृंगार स्वयं भगवान करता हो, रोज सवेरे आकर उठाता हो, उन जैसा खुश नसीब कोई और होगा? बात केवल इतनी है, चिंतन और स्मृति स्वरूप, स्मृति रहे, ये सब मेरे हैं खजाने, तो मेरे हो जाएंगे। केवल स्मृति की बात है, हैं सब हमारे ही पास। सहन शक्ति, जो ये कहते हैं सहन शक्ति नहीं है, जो घरों में ठंडा रोटी खाते नाराज हो जाते हैं, थाली फेंक देते हैं, ट्रेन में ठंडी रोटी मजे से खा रहे हैं, अचार भी नहीं है, ठेपले बच्चे हैं, सूखा माल है, वही खा रहे हैं, कहां से आगे सहन शक्ति? घर में ठंडी मिल जाती फेंक देते आपके ऊपर, गुस्सा आ जाता, ट्रेन में गुस्सा नहीं आ रहा है। हमारे अंदर है सब कुछ। दादी सुनाया करती थी, दादी प्रकाशमणि, बाबा ने जब शरीर छोड़ा, मुझे याद आ रही थी वो बात, वो सभी भूल गए हैं बात, मैं भी भूला हुआ था, याद आई। तो जैसे ही बाबा ने शरीर छोड़ा 9 बजे के आसपास, इस टाइम दादी ने कहा मेरे में इतनी ताकत आ गई, वो तो बाबा ने दे ही दी थी ना हाथ में हाथ देके, तो मैंने फटाफट सबको फोन कर दिए, फोन उन दिनों मुश्किल लगते थे जरा, तो फोन किए, फोन पे आवाज ऐसी थी जिसे सुन के लोगों को लगता था कि अगर ऐसा हो जाता तो दादी ऐसे बोलती क्या, थोड़ा सा गड़बड़ होती है ना बोल में। दादी बोल रही, भाई आप सबको ये सूचना दी जा रही है, मैं दादी प्रकाशमणि बोल रही हूँ, कुमार का दादी कहते थे, बाबा अव्यक्त हो गए हैं। अब ये भाषा भी नई थी, अव्यक्त हो गए इसका मतलब क्या, ये तब सबको पता नहीं था। ये अगर बता दे देह छोड़ दिया है तो लोगों को जब पता चला दिल्ली में सबसे पहले, तो वो कंफर्म करने के लिए वापस मधुबन फोन कर रहे हैं कि भाई किसी ने हमें ये गलत फोन किया है। अब दादी की आवाज सब तो नहीं जानते थे ना, क्योंकि दादी यहां नहीं रहती थी, दादी तो बॉम्बे में थी, उनसे सब परिचित नहीं थे कि किसी ने हमको गलत फोन किया है कि तुम्हारा बाबा नहीं रहा, ऐसे बोला था बाबा नहीं रहे। तब जब बताया दादी ने कि मैं ही बोल रही हूँ, मैं प्रकाशमणि हूँ, बॉम्बे में रहती हूँ, मैं यहाँ हूँ अब, तब लोगों को विश्वास हुआ। तो ताकत हमारे अंदर है, हम उसे जगा लें। सारे खजाने हमारे पास हैं, एक मालिक हुए हम बाबा के सभी खजानों के, ज्ञान के भी मालिक हैं पहली चीज, वो तो सबको अच्छी तरह अनुभव है ना। जो ज्ञान बाबा का था वो अब किसका हो गया, हमारा हो गया, हम मालिक बन गए, हम अधिकार से ज्ञान देते हैं, अथॉरिटी से ज्ञान देते हैं। केवल ये नहीं कहते भगवान ने ऐसे कहा है, वो तब की बात, बाबा कहता था जब हम में से किसी को भी ज्ञान देना नहीं आता था, जब सब डरते थे, लोग विरोध करते थे, तो बाबा कहते थे सब चित्रों पे लिख दो भगवान वाच, भगवान ने ऐसा कहा है। लेकिन अब वो ज्ञान किसका हो गया, हमारा, हम अनुभवों से, हम अथॉरिटी से सबको ज्ञान देते हैं। दूसरे मालिक है माताओं का याद, स्वराज अधिकारी, जो बहुत बड़ी चीज है, जो इसका अभ्यास करेंगे, बस ज्यादा मैं इस पे नहीं कहूंगा, जो इसका अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूं, उनके अंदर राजाई संस्कार जागृत होने लगेंगे। ये रहस्य सभी ख्याल रख के इस अभ्यास को बहुत बढ़ाएंगे, बेहद का वैराग्य। कई लोग इसको गलत समझ लेते हैं, माताएं भी गलत समझती हैं। आज एक माता का फोन आया, अब देखो उसने क्या किया, पवित्रता कारण घर से चली गई। सबसे छोटी बच्ची 3 साल की, कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए, अकेली। अब उसे टीचर भी समझा रही है कि भाई ऐसे नहीं करना है, पहले भी चली गई थी ज्ञान से पहले, लड़ाई झगड़ा होता होगा, 3 साल पहले चली गई थी, अब 3 साल से ज्ञान में, उसके बाद ज्ञान लिया था। कोई बच्चा नहीं चाहिए मुझे, तो केवल भगवान चाहिए, वो मिल गया, इन सब से मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो बाबा कितनी सुंदर बात सुनाते हैं, स्नेह भी हो, खुशी भी बहुत हो, ऐसे नहीं चेहरे लटके हुए हो, हम तो उदासी हैं। एक उदासी अखाड़ा भी है ना भारत में, उसके महामंडलेश्वर होते हैं, वो भी एक पंथ है सन्यासियों के बीच में, उदासी पंथ, उदास रहते हैं, राख लपेटी है, उदास, वैरागी हैं हम, हमें कोई लेना देना नहीं संसार से। यहाँ बहुत सुंदर इसको समझ लेना है, न वैराग का अर्थ ये कि हम छोड़ के जंगल में चले जाएं, कार्यों के प्रति रुचि हो जाए, बिजनेस धंधे करें ही नहीं, हम तो वैरागी हैं, घर जाना है, अब क्या करेंगे ज्यादा पैसा कमा के, बच्चे पढ़े ना पढ़े हमें क्या लेना देना, अब क्या करेंगे, विनाश तो आ गया है, क्योंकि हमारे पास तो रोज आते हैं ऐसे कुमार कुमारियां, क्या करेंगे पढ़ के। बाबा कह रहे टाइम बहुत कम है, ये भी आज एक फोन था, आज मिलने वाले कम थे नीचे, तो मैं अपना फोन खोल के रखा, तो देखो किस किस के आते हैं, समस्याएं होती हैं लोगों की। तो कुमारी जैन परिवार से MSc कर ली है, नौकरी नहीं करनी है, बाप कहता अच्छी फर्स्ट क्लास आई है, अच्छी जॉब कर लो, नहीं मैं तो साध्वी बनूंगी, ब्रह्मा कुमारियों की साध्वी, मुझे नहीं ना आगे पढ़ना है ना नौकरी करनी है। अब खींचातान हो रही है दोनों में, बाप और ये कन्या। मेरे से पूछे क्या करना है, बाबा ने आज ही कहा है, कल की मुरली, आज ही कहा है, टाइम बहुत थोड़ा है, लंबे काल का अभ्यास चाहिए, था ना कल मुरली में, हमें लंबा काल कहाँ से मिलेगा, 2 साल तो ज्ञान में हुए, आप लोगों को तो लंबा काल मिल गया। मैंने कहा संपूर्ण ज्ञान धारण कर लिया इसने, अब इसको समझाना बड़ा कठिन है। तो वैराग के साथ कर्तव्य पालन, वैराग का सीधा सा अर्थ है संसार में लगाव नहीं, संसार की इच्छाओं के प्रति आकर्षण नहीं, विकारों से भी वैराग्य, मान श्यान की इच्छा से वैराग, सबसे गहरी बात यह है। बाबा की मुरली में ब्रह्मा बाबा की एक बात मैंने सुनी, वो 18 जनवरी की मुरली है कभी की, जो बहुत गहरी बात है, हमने तब भी सुनी होगी, बाद में भी सुनी होगी, लेकिन गहराई से टच किया उसने मुझे। ब्रह्मा बाप ने अपने अधिकार का भी त्याग कर दिया था, वो बच्चों को दे दिया, पैसे पर कोई अधिकार नहीं, यज्ञ में भी सब कारोबार बच्चों के हवाले करके अपने को अधिकारों से भी ऊपर उठा लिया, मालिक वो थे, इससे भी परे। और आज की मुरली में बहुत अच्छी बात थी, जो ऐसे त्यागी बनेंगे मान की इच्छा के, जो न्यारे हो जाएंगे, सारा संसार उनके ऊपर स्नेह के पुष्पों की बरसात करेगा, बाप भी। तो बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है हमारा, कर्म करें चाहे वो सेवा का कर्म हो। मान नाम इनकी इच्छाओं से ऊपर, कार्य किया पूरा हो गया। मुझे कहानी ने बड़ा अपील किया इस बार, हालांकि वो पहले भी सुनते थे, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे, कहानियां बनाई लोगों ने, वो थोड़ा ही राजा थे, कहीं ऐसे ही चलते थे पैदल, कहीं जा रहे थे, कोई भिखारी आ गया, अर्जुन ने उसे एक हीरा दे दिया, चोर ने देख लिया था, चोर ने हीरा लूट लिया उससे, घर पहुंचा रोता हुआ, अगले दिन फिर आया, फिर वो घूम रहे थे, उसने कुछ उसे दे दिया, दूसरा कुछ पुखराज जैसा, लो भाई ये सोच के कि मेरा पुण्य बनेगा, गरीब है बेचारा, मेरा पुण्य होगा। श्री गण सुन रहे थे कि ये पहले बोलता है कि मेरा पुण्य होगा, ले लो। अभी वो उसकी आगे कहानी है, उसने घर में मटके में रख दिया, वो पत्नी का दूसरा मटका टूट गया था, वो उसे लेके चली गई, पानी भर आई, वो गिर गया वहां, वो मछली निगल लिया, फिर रोता हुआ अगले दिन आया। अब श्री कृष्ण ने उसे दो पैसे दिए, अर्जुन हंसने लगा, दो पैसे, और उसको कहा जाओ इन दो पैसों से उपकार करो, मेरा पुण्य जमा होगा ये नहीं, उपकार करो। वो आगे गया, देखा तो एक मछली जाल में फंस गई है पकड़ने वाले की, उसने कहा ले ये दो पैसे, मछली मुझे दे दे, सोचा इसको छुड़ा दूं। उसने मछली की पूंछ पकड़ी तो उल्टी हो गई ना, वो पुखराज उससे मुंह में से नीचे गिर गया, वो जोर से खुशी में चिल्लाया पा लिया पा लिया पा लिया, चोर वहीं था, उसने सोचा इसने मुझे देख लिया है, ये राजा को शिकायत करेगा, हाँ पैर पकड़ लिया, अपना हीरा वापिस ले लो भाई, बताना नहीं राजा को, दोनों चीज मिल गई ना। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया देने के पीछे भावना क्या है, देखो ये भावना भी सुंदर थी, मेरा पुण्य बनेगा, और श्री कृष्ण ने क्या भावना रखी, इससे उपकार करो, गहरी बात है। अब जरा खोल देता हूं इसे, आप भंडारी में पैसे डाल रहे हैं, आपको संकल्प है हमारा इससे पुण्य बनेगा, संकल्प तो अच्छा है, कोई खराब नहीं है। बाबा भी कहते हैं मुझे बहुत हंसी आती है जब बाबा कहते हैं कि हम बाबा को कखपन देते हैं और बाबा कहते हैं बाबा सतयुग में आप हमें महल दे देना, पहले ही मांग लेते हैं कि इसलिए दे रहे हैं सोने के महल दे देना, वो तो बाबा रूढ़ियां सिखाते हैं, पर हम माताएं भाई सब सीख लें, आप भंडारी में कुछ डाल रहे हैं, पुण्य तो वो हो ही गया, सोचने की जरूरत नहीं कि पुण्य बने, या सोचने से बनेगा, बोलो नहीं, संकल्प करो इस पैसे से अनेक आत्माओं का कल्याण हो, इस पैसे से अगर कोई ब्रह्मा भोजन खाए उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाए, ये पैसा किसी की बीमारी में लगे तो निरोग हो जाए, इस पैसे से बाबा का यज्ञ निर्विघ्न हो जाए, इस पैसे से बाबा का कार्य और सुंदर चले, इसमें और उसमें अंतर हो गया, हो गया नहीं, तो पुण्य तो हमारा बनता ही है, उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं। ठीक यही गति इधर है, एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, वो पहले ही संकल्प किया हुआ इस सेवा करने से मेरा नाम बहुत हो जाएगा, बहुत लोग मुझे जान जाएंगे, तो क्या होगा, नहीं उसे सब जान जाएंगे, जो उसने संकल्प रखा पूर्ण होगा, लेकिन उसका भाग्य नहीं बनेगा। एक गति, दूसरा कोई सेवा कर रहा है उसको मान बहुत मिल रहा है, मुरली में था प्रकृति तुम्हारी दासी बनेगी, प्रशंसा तुम्हारी बहुत होगी, कल था या आज था, आज था, चलो जब भी था था, क्योंकि मैं भी भूल गया कल था या आज था, पर बात बहुत गहरी थी, लोग तुम्हारी बहुत प्रशंसा करेंगे, प्रकृति तुम्हारी दासी होगी, प्रकृति दासी माना, बोलो और बोलो, धन बहुत आएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कारों की तो लाइन लग गई और शायद हेलीकॉप्टरों की भी लग जाए, पुष्पक विमान आने से पहले और कुछ भी हो जाए, लेकिन बोलो अब, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जैसे बढ़ रहे हैं हमारी स्थिति बढ़ रही है, हमारा योग बढ़ रहा है, बाबा का नाम हो रहा है, सेवाएं बहुत बढ़ रही, चारों ओर जय जयकार होगी, बहुत जय जयकार होगी। आप समझ लें जिनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, जो श्रेष्ठ योगी बन गए होंगे, जिन्होंने पवित्रता से अपना बहुत श्रृंगार कर लिया, संसार उनके पीछे भागेगा, चरणों में पड़ेंगे, सब कुछ अर्पित कर देंगे, लेकिन बोलो और बोलो, क्लियर बोलो, बैलेंस सुनने से लोग समझते नहीं क्या बैलेंस होता है। उस चीज को हम अपने लिए स्वीकार नहीं करें। बहुत महिमा कर रहे लोग, बहुत महिमा कर रहे हैं, इस महिमा को सहज सी विधि है, इस महिमा को ऊपर भेज दिया करें। उसने ही हमें महिमा योग्य बनाया, वो न हमें ये सिखाता तो हमारी कौन महिमा करता भला, चाहे ज्ञान हो चाहे स्थिति की बात, तो उसने ही तो गाइडेंस दी है ना, उसने ही हमें बनाया है, हमें बनने की बुद्धि भी नहीं थी, बनने की शक्ति भी नहीं थी। धन अथाह जाएगा, बाबा के महावाक्य है, जिन इस देव देवियों के मंदिरों में इतना चढ़ावा चढ़ता है, जब वो प्रत्यक्ष होंगे तो क्या हो जाएगा, सारे संसार की धन संपदा, ये भगवान वाच है, तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। लेकिन हम उसे करेंगे क्या, ये होल सोने हीरो से भर दिया जाए, क्या करेंगे हम उसका, अभी तो महल बन नहीं सकते, चोर ले जाएंगे, क्या करेंगे हम उसका बताओ। इसलिए हमें इन चीजों से उपराम रहना होगा, हमें ये भी नहीं सोचना होगा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है इसलिए ये सब आ रहा है, खा पी लें दिल भर के, चले समोसे रात दिन खूब खाएं, सवेरे उठ ही नहीं पाएंगे, फिर लोग जो दे रहे जो आ रहे वो कहेंगे कोई गलत देवी के पास आ गए, ये नहीं है वो कहीं और है, उसे ढूंढो, ये होने लगेगा। इसलिए इन सभी के त्यागी दे रहे हैं तो लोग किसे दे रहे हैं, बाबा को, मुझे नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा करेंगे क्या, या करेंगे कुछ, क्योंकि अगर इन सब में ममत्व हो गया तो स्थिति डाउन हो जाएगी। इसको कहते हैं साधना और साधनों का बैलेंस। साधन हमारे पास हैं लेकिन हम उनमें आसक्त न हो जाएं, नहीं तो साधना खत्म हो जाएगी। इसलिए जो धनवान बन जाते हैं उनकी साधना पूरी हो जाती है ना। कुमार, उसने 10 साल बहुत सेवा की, ज्ञान छोड़ के शादी की, साहूकार हो गया, लोग कहते हैं तो बड़ा अच्छा, शादी भी की और साहूकार भी हो गया, हम ऐसे ही रह गए। तुलसीदास, बाबा से पूछा था, बाबा ने इसका उत्तर दिया था, उत्तर था कि जो उसने 10 साल सेवा की उसकी प्रारब्धियां ही मिल गई है। अब बोलो जब उसको पैसा बहुत मिल गया, कईयों के साथ हुआ है, मैं सच्ची बात सुना रहा हूँ, करोड़पति बन गए कुमार शादी करके, कहा शादी भी की, ये तो अच्छा रहा हमसे, नहीं, ज्ञान योग खत्म, जीरो, खा लिया अभी कच्चा फल। इसलिए हमें वैराग वृत्ति धारण करनी है, सब कुछ होते भी मेरे लिए नहीं, सब बाबा के लिए, उसके कार्यों के लिए। अगर कोई धन संपदा को अपने सुख सुविधाओं में यूज करने लगता है तो उसकी स्पिरिचुअल पावर, उसका तेज खत्म होने लगता है। मूल्यों में आ रहा ये शब्द, सतयुग में तुम्हें शरीर भी बहुत तेजस्वी मिलेगा, कितना सुंदर शब्द था, साकार मूल्य में था ना एक दो दिन पहले, आत्मा भी तेजस्वी, शरीर भी तेजस्वी होगा। तो ये सब अब हमारे लिए नहीं, जो जितने इसके त्यागी बनेंगे उतना ही श्रेष्ठ भाग्य, और भाग्य भविष्य में नहीं, यहीं बहुत सुख प्राप्त करेंगे। जो अतीन्द्रिय सुख है, जो बहुत गहरा सुख है, जो परमानंद है, उसी के लिए परमानंद शब्द है, उससे बढ़कर और खजाने होते ही नहीं। जब आत्मा आनंदित हो जाती है वो स्थिति सर्वश्रेष्ठ है, और वो सभी खजानों पर भारी है, सांसारिक खजानों पर। इसलिए हम स्नेह भी दें बच्चों को, परिवार में स्नेह का माहौल बनाएं, सूखे सन्यासी न बन जाएं। इसको वैराग नहीं कहते, वैराग का अर्थ घर जाना है, इसलिए महान योगी बनना है। न खान पान में रुकना है, न साधनों में रुकना है, न मानसान की इच्छा में रुकना है, न मानसान के पीछे भागना है। नाम के लिए कुछ नहीं करना, नाम हो तो केवल एक का। अगर किसी ने सोच लिया इससे मेरा नाम होगा तो बाबा का नाम वहां होगा ही नहीं, और उसकी प्रारब्ध भी श्रेष्ठ नहीं बनेगी। तो हम इस बेहद के वैराग्य को अपनाएं, क्योंकि कई लोग गलती कर रहे हैं, भाई हम तो वैरागी हैं, सूखा चेहरा हुआ है, सूखा सूख गया चेहरा, क्यों वैरागी हैं? लेकिन बाबा ने क्या कहा, शांति खुशी और शक्ति तुम्हारे चेहरे से दिखाई दे। तुम्हें देखकर, बहुत सुंदर बात है ये, तुम्हें देखकर लोग कहें ये मुक्तिदाता भगवान के बच्चे मुक्तिदाता हैं। ये सुंदर बातें सभी भाई बहने अलग से नोट करें, बाबा के शब्द ही बहुत आकर्षक हैं ये, हमारे चेहरे पर ये तीनों झलक हों, शांति भी, खुशी भी, शक्तियां भी, और भी प्रेम भी, बहुत सुख से भरा हुआ चेहरा, बहुत संतुष्टता से भरा हुआ चेहरा, ये वैराग का सच्चा स्वरूप है। सूखापन नहीं कि खुशी नहीं है, हंसे क्यों, क्योंकि हम तो वैरागी हैं, क्यों हंसे, नहीं ये गलत हो गया। बच्चों की देख देख क्यों करे, माताएं गलती करती हैं, बच्चा बीमार है, ये इसका हिसाब किताब है ना, मुझे तो साक्षी रहना है, मैं तो वैरागी हूं, मैं क्यों इसकी संभाल करूं, क्यों दवाई खिलाऊं, ये गलत। बच्चों को क्यों पढ़ाएं, उनकी पढ़ाई पे क्यों ध्यान दें, गलत। अब वो दो चीज में सुना दूं, समय आगे बढ़ रहा है, दो चीजें, क्योंकि यहां सब बैठे हैं, माताएं बहुत बैठी हैं। बच्चों को यदि आपने मोबाइल दे दिया है, मैं चाहूंगा कि मैं हर क्लास में सुनाऊं ये, क्योंकि जिसने मुझे बताया वो वैज्ञानिक है, और उसने कहा भाई तुम्हें मौका होता है सभाओं में, सबको ये बात सुना दो, मोबाइल से ब्रेन मस्तिष्क श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, और बच्चों का ब्रेन तो नाजुक है ना, कोमल। बच्चों को अगर आपने मोबाइल दे दिया खिलौना, गेम खेलते रहो, कार्टून देखते रहो, तो उनका ब्रेन जल्दी ही सिकुड़ जाएगा। परसों एक माता अपने लड़के को लेकर आई, अब माताएं बेचारी देखो, माताओं की मैं सोचता हूं इन पे कैसी मुसीबत आई है, तीन लड़के, एक को साथ लिए हुए थी, वो सातवीं क्लास में पढ़ता है, कहा मेरे तीनों लड़के पढ़ाई में होशियार थे, मोबाइल के चक्कर में फेल होने लगे हैं। बेचारी ने अपनी स्थिति ज्यादा तो नहीं बिगाड़ी थी, लेकिन असर तो आता है ना माँ पे। वो छोटा लड़का अब वहीं बैठा मेरे पास, मोबाइल देख रहा, कैसे देख रहा, आप देखो ध्यान से, यहाँ आंखें ऐसी आधी खुली, जबरदस्ती देख रहा है, उसके चेहरे से दिख रहा था कि इसने अपना ब्रेन नष्ट कर दिया है। मैंने माता को कहा देखो आप देख ही रही हो, इसको दिखना कम हो गया है, इसका भविष्य क्या होगा एक दो साल में आप समझ सकती हो, लेकिन आप घबराओ नहीं, अभी ये बच्चे मानते तो नहीं। मैंने भी उसको प्यार से समझा, छोटा बच्चा उसको ज्यादा क्या कहें, प्यार से बताया कि पढ़ो तुम, इसे देखो तुम्हें नुकसान हो, उसको बिल्कुल 6 इंच से देख सकता था मोबाइल, इसे दूर से नहीं, आंखें जा रही उसकी, क्योंकि ब्रेन सिकुड़ रहा है, तो ब्रेन ही तो है, आंखों कान सबके लिए ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना। तो माताएं अब इस खिलौने को थोड़ा कम करें। माताएं भी सोचती हैं जान बचे, दिमाग खा जाता है सारा दिन, काम ही नहीं करने देता, ले मोबाइल पकड़ खेलता रहो इससे। अब वो कभी यहां रख रहे, कभी कानों पे सुन रहे हैं, देख रहा मम्मी भी तो सुन रही है, वो भी लगाया हुआ, क्या सुन रहा है ये पता नहीं। छोटे बच्चे भी हो गए तैयार। एक बात ये ठीक है, भाई लोग भी ध्यान दें, जो कुमार बैठे हैं इसका ज्यादा प्रयोग नहीं। इसे मन तो भटकता ही है, एकाग्रता तो नष्ट होती है, पर ये वैज्ञानिकों की नई रिसर्च है कि इससे ब्रेन सिकुड़ता है। इसलिए सोने के समय 2 फीट दूर तो होना ही चाहिए, और फ्लाइट मोड पे रख दो या बंद कर दो। हेडफोन लगा के सुन, नहीं काम की बात आप सुन रहे हैं, अच्छे गीत सुन के आप योग कर रहे हैं, वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है। लेकिन आप बहुत चीजें देख रहे हैं फोन पर, उसे बुद्धि भटकती है। और गीत आदि भी, ये कान पे जो लगाने की बात है, इसको भी संयमित करें। अगर कोई 8 घंटे लगाते रहेगा, उसकी श्रवण शक्ति कमजोर होती रहेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है ना, उधर भी नर्व जो ब्रेन से आ रही है वो कमजोर हो जाती है। दूसरी बात जो मैं माता की कह रहा था, माताओं को देखो मैं सावधान करना चाहता हूं, कोई बुरा नहीं मानना। तो माता का एक लड़का, अब लड़के बाइक तेज चलाते ही हैं, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया था, ठीक हो गया। अब ये माता को एक संकल्प उठने लगा, कहीं मेरे बच्चे का ऐसा एक्सीडेंट ना हो जाए कि उसका धड़, ये सिर धड़ से अलग हो जाए। और इस संकल्प के वो इतना वश हो गई, 4 दिन पहले का फोन है, इतना वश हो गई कि संकल्प को चाहते हुए भी हटाती नहीं, हट नहीं पा रहा है। अब नींद में भी उसको दिख रहा है लड़का गिरा है, सिर अलग पड़ा है, ये कल्पना, ये विजन रात दिन रहने लगा उसके सामने। अब हाल देखो उस मां का, मतलब हाल न खा सकती है, न सो सकती है, न खुश है, न मुरली सुन सकती है, ज्ञान लिया बस। मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की, 1-2 बातें सिखाई, क्योंकि ऐसे केसेज में मन पर कंट्रोल चाहिए ना, ताकि वो उस विचार को बदल सके। मास्टर सर शक्तिवान, मैंने कहा नींद तो आएगी नहीं तुम्हें, रात को बैठ के लिख लिया करो, 1000 बार लिख लो, सवेरे उठ के लिखो, तो धीरे धीरे आत्मा में ताकत आएगी और ये विचार बदल जाएगा। पर मैं जो उसको भी सुनाया और माताओं को सुनाता हूँ, 5-6 केस आ गए नीचे शांति वन में मेरे पास, माताएं खुद आई, हमें बहुत डर लगता है, और सबकी यही समस्या, बच्चे को कुछ हो न जाए, बच्चों को ये न हो जाए, कैंसर बहुत बढ़ रहा, मेरे बच्चों को न हो जाए। मैंने कहा तुम्हें बताया किसने ये? नहीं बताया तो नहीं। तो सुन ले सभी, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका निर्माण होता है। अब या तो इसको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई है कि उसकी इस तरह मृत्यु होनी है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि अगर ये कुछ होना भी है तो उसको भी टाला जा सकता है। जब बाबा ये कहता है योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ती है, ब्रह्मा बाबा को भी कहा, 60 साल आयु थी, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो इन घटनाओं को टाला जा सकता है। तो मैंने उसे सिखाया तुम अब एक संकल्प करो, मेरे बच्चे के साथ बाबा है, वो पूर्ण सुरक्षित है। मैंने कहा इसको रटो जरा, मैंने उसे रिपीट कराया, मैंने कहा 100 बार रट जाओ, ताकि वो शुरू तो हो, वो से हो नहीं रहा, उसको बार बार वही सीन आ रहा है, बच्चे का सिर अलग हो गया है, वो सीन देख रही है कहीं ऐसा ना हो जाए, और भयभीत न मेरे पास शब्द है बताने के लिए, उसकी वाणी से पता चल रहा था। बचेंगी सभी माताएं इन चीजों से, आपके बच्चों को कुछ नहीं होने जा रहा है, सब घर जाएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे बोलो माताएं, जाएंगे आप चाहती हो जाएंगे या नहीं जाएं या इधर ही रहेंगे? माँ माताएं बोल नहीं रही, सब जाएंगे। मुरली में ही तो था, बाउंस बना दिए हैं, कोई चाहे या न चाहे ये रखने के लिए नहीं है, ये तो छूटेंगे, महाविनाश होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि दुख ही बहुत बढ़ जाएगा, उसको खत्म करना जरूरी होगा, इसलिए ये प्रभु जी का प्लान है। घबराए नहीं माताएं, सब सुंदर गति को प्राप्त हो, सब सहज शरीर छोड़ें, हॉस्पिटलों में नहीं, बिल्डिंग गिर गई दबकर नहीं, इसके लिए आप सभी योग के वाइब्रेशंस फैलाते रहो। आज बाबा की मुरली में लास्ट बात याद दिला दूं, विनाश काल में बिल्ली के बच्चे, पुंगरे सिंधी में कहते हैं, बिल्ली के बच्चे सेफ रहेंगे, बाबा की मदद मिलती रहेगी, पर किने ऐसे नहीं कहें बाबा मेरा है और याद करें किसी और को, तो मदद नहीं मिलेगी। देखो बाबा कुछ छुपाता नहीं, अगर तुम्हें मदद नहीं मिल रही तो यहाँ तुम गलती कर रहे हो। तो सभी वैराग्य भी रॉयल वैराग्य, स्नेह युक्त वैराग्य, चेहरे पर खुशी देने वाला वैराग्य, वैराग्य का अर्थ है योग युक्त होना। ओम शांति।